शांति। सभी आप भी बोलो ना ओम शांति, जोर से बोलो ओम शांति। ओम शांति। आज मैं आपसे शुरू करने से पहले थोड़ी देर आपको आपसे अपना अनुभव शेयर करूं कि कैसे ये एक आदमी एक डॉक्टर के लिए कैसे ये पॉसिबल हुआ कि वो इस तरफ मुड़ जाए, और वो भी ऐसे डॉक्टर के लिए जो बिल्कुल क्या बोलते हैं हार्डली, मतलब क्या बोलते हैं बहुत हार्ड नट होते हैं ना, हार्ड नट नहीं होते, जो बहुत ही ज्यादा साइंस में विश्वास करने वाला, बहुत गहरा साइंस में विश्वास करने वाला, तो वो कैसे मेरे लिए पॉसिबल हुआ। ऐसे हम लोग जब 1986 में मैं एम्स में था और ऑर्नियो इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था, तो हम बहुत बिजी रहते थे, सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक हम काम करते थे हॉस्पिटल में, बहुत बिजी। एम्स में जो सिस्टम है ना, बहुत ही एक तरह से बहुत हार्ड सिस्टम है ऑर्नियो इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में, तो सुबह 7 बजे हम आते थे हॉस्पिटल और रात को 2 बजे तक हम काम करते थे, और 2 बजे काम करने के बाद फिर हम वापिस गए, रात को 2 बजे गए, 1:30 बजे 2 बजे घर जाते थे, 2 से लेकर के 6 बजे तक सोते थे, और 6 बजे फिर उठ के स्नान करके तैयार होकर 7 बजे हॉस्पिटल। जो हमारे जो सीनियर जो कंसल्टेंट थे वो सुबह आते थे 8:30 बजे, तो उससे पहले हमको सब कुछ तैयार करना होता था, सब कुछ रेडी करके उनके सामने एकदम परफेक्ट करके रखना होता था, फिर वो हमसे पूछते थे। तो इस तरह का सिस्टम था, तो बहुत बिजी रहते थे, तो बिजी रहने के कारण से हमें कुछ फुर्सत नहीं मिलती थी। सिर्फ सैटरडे, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे हाफ डे होता था, बाकी दिन तो मतलब हम सेकंड सैटरडे भी हम लोग 4 बजे फ्री होते थे, हाफ डे होने के बाद भी 4 बजे फ्री होते थे। तो वैसे मैंने एमबीबीएस के सेकंड ईयर तक फिल्म नहीं देखी थी, कोई फिल्म नहीं देखी थी। मैंने नियम किया था कि जब तक मैं एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिले तो मैं फिल्म नहीं देखूंगा। फिर भी सेकंड ईयर, जब फर्स्ट ईयर पास करने वाले हुए ना हम लोग, फर्स्ट ईयर का जब पहला जो होता सेशन, तो कॉलेज में फिल्म दिखाई तो पहली फिल्म देखी थी। तो जब हम एम्स में थे तो उस समय फिल्मों का तब तक शौक पड़ चुका था, फिल्म देखने का ना, मूवीज देखने का। तो शादी तो हो गई थी तब तक, तो बाला जो वाइफ है ना, युगल है, जो साथ बैठे थे, और साथ में हमारा बेटा था उस समय 2 साल का लगभग। तो हम एक पिक्चर लगी थी उपहार सिनेमा में, दिल्ली में एक सिनेमा है उपहार सिनेमा, बाद में जल गया अभी। तो हम इस तरफ रहते थे आयुर्विज्ञान नगर, एम्स है ना, काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है एम्स है, साथ में आईसीएमआर है, फिर नेशनल मेडिकल बिल्डिंग है, फिर साउथ एक्सटेंशन है, तो उसके परली तरफ एशियड विलेज कॉम्प्लेक्स है, वहां हमें आयुर्विज्ञान नगर है, मतलब एम्स के जो क्वार्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स को क्वार्टर्स मिलते हैं, हमें वहां क्वार्टर मिला था रहने के लिए, तो हम वहां रहते थे। और एम्स के परली तरफ इस तरफ को उपहार सिनेमा था, तो जब कभी छुट्टी मिलती थी सेकेंड सैटरडे को, तो हमने एक बार टिकट मंगाई, तो हम लोग, मैं और वाइफ और बच्चा, तीनों हम जो है स्कूटर पे बैठ करके हम लोग फिल्म देखने, शाम को 6 बजे का शो जो होता है ना, 6:30 का शो जो होता है, उस पर निकले। तो हम जा रहे थे ऐसे, क्रॉस कर रहे थे, तो सामने बीच में ना एक बिल्डिंग थी, उस पर लिखा था गेटवे टू हेवन। मैंने नहीं देखा था, ये तो बाला ने देखा, युगल ने देखा कि गेटवे टू हेवन लिखा है। तो मैंने कहा कि, मतलब वो बाला ने मुझे कहा कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं, पर मुझे नहीं जाना फिल्म देखने। तो मैंने, क्या हुआ? कहते देखो यहां पे लिखा गेटवे टू हेवन, हम इसके अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या है। मैंने कहा नहीं नहीं आज तो हमारे पास टिकट है, आज हम देखने नहीं जाएंगे, आज हम तो फिल्म देखने जाएंगे आप, और फिर कभी इसमें जाएंगे। तो मुझे फिल्म देखने का शौक था, मतलब कि तो इनको डिस्टर्बेंस क्यों होती थी, ये फिल्म देखना क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि राहुल जो हमारा बेटा था, राहुल वो जो है उसको अंदर अंधेरे में डर, अंधेरे में ना वो रोना शुरू कर देता था, यूज टू स्टार्ट क्राइंग। तो जैसे ही वो रोना शुरू करता था इनको बाहर आना पड़ता था, बच्चे को लेकर के बाहर आना पड़ता था। तो मैं तो फिल्म देखता रहता, वो बाहर आ जाती थी है ना बच्चे को लेकर। तो कहती वो तो गेटवे टू हेल है, जहां हम जा रहे हैं वो तो हेल है, नरक है, और यहां तो गेटवे टू हेवन लिखा हुआ, हम यहां अंदर जाए। तो मैंने कहा आज नहीं, हम फिर कभी जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब दोबारा हम फिल्म देखने का, फिर काफी दिनों बाद फिर प्लान बना, तो हम फिल्म देखने के लिए फिर टिकट मंगा ली, गए, जाने का प्लान हो गया। तो फिर हम उसी रास्ते से निकले तो फिर उनको फिर नजर पड़ी गेट वे टू हेवन। तो उन्होंने कहा अच्छा लास्ट टाइम तो आपने कहा था नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट टाइम हम, फिर मेरे को याद आ गया हाँ मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो ठीक है, मैंने कहा टिकट को छोड़ो, टिकट वगैरह को छोड़ देते हैं, कोई बात टिकट खरीदे तो कोई हर्जा नहीं, पैसे खराब हैं कोई हर्जा नहीं, किंतु हम आज चलते हैं अंदर। तो बहुत जब हम अंदर की तरफ गए बिल्डिंग में तो अंदर डरते डरते गए, मतलब ना ऐसा पहली बार किसी नई बिल्डिंग में जाए ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, साउथ एक्सटेंशन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो हम डरते डरते थोड़ा सा गए अंदर के, पता नहीं अंदर क्या होगा। और तीन चार बहनें खड़ी थी सफेद साड़ी पहने हुए, है ना, तो तीन चार बहनें ऐसे खड़ी हुई थी। तो हम डरते अंदर गए तो मैंने बाला को कहा बाला आप बोलो कि हमें ना देखना है अंदर क्या है। तो वो मुझे कहे कि आपको इनको कि अंदर क्या है देखना है ना। तो उन्होंने जो है मुझे, फिर मैंने ही बोला कि मैंने ऐसे ऐसे हम ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं यहां पर एम्स में, तो हम चाहते हैं अंदर देखना चाहते हैं आपके अंदर क्या है, ये क्या अंदर बना हुआ। तो उसने कहा ठीक है। तो हमने, उन्होंने हमें दिखाया। तो पहला पहला चित्र ये था, ये देख रहे हैं पहला चित्र ये जो था ना आत्मा का, परमात्मा का, ठीक वो वाला चित्र पहला ये लिखा ना आप आत्मा है ना, ये चित्र था। और फिर एक चित्र वो था परमात्मा वाला चित्र था, है ना। तो ये चित्र मुझे जैसे शुरू में देखा तो मुझे शुरू में देखते ही ऐसा लगा, नहीं सचमुच ये बात बहुत कन्विंसिंग है कि मैं जो हूं एक कंकाल और एक आत्मा, तो आदमी बनता है जीवात्मा, है ना, तो आदमी इंसान बनता है। क्योंकि हमने एज ए डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स को रिवाइव किया है ना, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे साथ मरे भी हैं, बहुत सारे मरे हैं, एक दो नहीं बहुत मरे होंगे, है ना। अब सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, हम उनको बचाने की कोशिश करते हैं, बच नहीं पाते हैं, तो हम जानते हैं हम क्या कहते हैं, वो तो चला गया ये बॉडी ले जाओ, है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। तो ये प्लीज ये, किसका मोबाइल बज रहा है, क्या बज रहा है, मोबाइल ले लो उनका ना, जिसका जिसका बज रहा है, आप फ्री मोबाइल मिल रहा है ले लो आप। आपको कहा ना मोबाइल नहीं बजाना है, मोबाइल बंद रखना है कल तक, है ना, ले लो ले लो मोबाइल ले लो, इनको दे दो, इनको अनिल भाई को दे दो मोबाइल। और आज तो ऑपरेशन के दिन भी मोबाइल बजा रहे हो तो अच्छी बात नहीं ना। अच्छा कोई बात, आप ले लो ले लो, इनको बंद नहीं करना था, इनको यूज भी करना नहीं था, आप ले लो, ठीक है अनिल भाई ले लो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वो चलो साइड साइड मैटर है। तो फिर हम लोग अंदर गए तो फिर हमने देखा, तो पहला पहला मुझे बहुत अच्छा चित्र लगा, ये वाला चित्र बहुत अच्छा लगा, समझ में आया कि सचमुच में हम कौन हैं। और मुझे अंदर से टचिंग आई कि नहीं सचमुच में जो ये जो ज्ञान है सचमुच एक सच्चा ज्ञान है, क्योंकि यहां पर कोई भी गुरुडम नहीं है। इससे पहले हम सत्य साई बाबा राधा स्वामी व्यास वहां हम जाके आ चुके थे, नामदान ले चुके थे, और मैंने जैसे उन्होंने बताया जो विधि बताई उसके अनुसार फॉलो किया था। जैसे राधा स्वामी वाले ने बताया कि आप ढाई घंटा सुबह ढाई से लेकर पांच बजे तक वो पांचों कर्मेंद्रों को बंद करके बैठ जाओ और अंदर अंदर नाम सिमरण करो पांच नाम, तो मैं ऐसे एक्यूरेट करता था बिल्कुल, फिर तो मुझे कुछ अनुभूति नहीं हुई। बचपन से मेरा टेंशन तो था कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कि भगवान कौन है, मैं जानूं भगवान कौन है, भगवान कैसा होता है देखने में, क्या है भगवान, कौन है भगवान, भगवान भगवान हम करते हैं बस एक्चुअली है कौन, जाने तो सही। किंतु मैंने बहुत सीरियस सिंसियरली ट्राई किया था बचपन से, किंतु मुझे कभी किसी से अनुभूति नहीं हुई। वो कहते कान में ना आवाज आएगी आपको घूंग, तो वो कान में घूंग की आवाज आती है ना, ऐसे कान बंद करो तो घूंग, कहते यही अनंतनाद है। मैंने कहा ये अनंतनाद होता है क्या, बुद्धू नहीं बनाओ हमको, है ना। तो फिर हमने मतलब उसको सिंसियरली ट्राई करने के बाद नहीं विश्वास नहीं हुआ, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, मन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था कोई ना, तो हमारे चिंता का परिवर्तन, जैसे हमने बताया ना आपको टाइप ए नेचर होती है ना, टाइप ए नेचर, जल्दीबाजी करने के आदत, चिंता गुस्सा उदासी सब मेरे अंदर थी। आई वॉज अ वेरी स्ट्रांगली टाइप ए पर्सन, है ना, बहुत स्ट्रांगली टाइप ए पर्सन, एंजाइटी बहुत होती थी, है ना, और सेंसिटिव बहुत था, इमोशनल भी बहुत था, क्रोध भी आता था, पर ज्यादा अंदर अंदर, बाहर नहीं करता था, अंदर अंदर आता था बहुत ज्यादा। तो जो भी चीजें आइसोलेशन की फीलिंग थी, अपने मन की बातें कह नहीं पाता था लोगों को, है ना, माता पिता को बता नहीं पाता था, बहुत आज्ञाकारी था, बहुत वफादार था, माता पिता ने जैसा कहा वैसा ही करना, 100% वही करना, ऐसी नेचर थी बचपन से। कभी जिद करने की आदत नहीं थी बचपन से किसी बात की भी। तो फिर जब हम अंदर वो देखा तो मुझे बड़ा क्लियर ऐसे लगा कि आत्मा और परमात्मा, है ना, दो ही तो बातें, गुरु की तो कोई बातें नहीं है, बीच में दलाल कोई 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 कमीशन एजेंट कोई नहीं है बीच में, ठीक है। तो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। तो मेरे मन में कुछ प्रश्न भी थे, एक तो रावण के बारे प्रश्न था, कि रावण जो है ऐसा रावण ऐसा आदमी कैसा हो सकता है इसके 10 सिर हों। मैंने कहा, मैंने सारी वो उनकी एग्जीबिशन देखने के बाद मैंने कहा, बहन जी आप मुझे बताएंगे, आप मेरे 3 प्रश्न हल करेंगे तो मैं आपको मानूंगा कि ज्ञान सच्चा है, नहीं तो झूठा है। आप कहते हो परमात्मा ने बताया है, किंतु मैं कैसे मानूं? अब मेरे 3 प्रश्न हल करो पहले, फिर मैं मानूंगा कि है। तो उन्होंने कहा कि बता, पूछो क्या पूछना है। तो मैंने कहा, देखो पहले तो मुझे बता रावण कौन था, कभी 10 सिर का आदमी होता है क्या? 10 सिर का आदमी कैसे हो सकता है? जिसके 10 सिर, वो सोएगा कैसे, खाएगा कैसे? और इट इज नॉट पॉसिबल, फिजिकली पॉसिबल है कि 10 सिर होना आदमी को? एक ही मुंह में खाना खिलाना मुश्किल है, और दूसरे में, तीसरे में, चौथे में खिलाओ, ऐसे ऐसे करके खिलाओ, है ना? मुंह से बोले तो कौन सा मुख बोलेगा, है ना? सोएगा कैसे, खाएगा कैसे? तो रावण ऐसा कहां से पैदा हो गया? तो मैंने उसमें रावण का एक चित्र भी था, एक चित्र में रावण भी दिखाते हैं वहां पर ना, उनकी एग्जीबिशन इसमें नहीं है रावण का चित्र, उनके एग्जीबिशन में रावण का चित्र भी था। तो मैंने पूछा, रावण मुझे बताओ पहले तक कौन है? कहते उसने, फिर मुझे रावण के बारे बताया कि रावण कौन है। फिर मैंने कहा, अच्छा ये बताओ हनुमान कौन था? एक बंदर यहां से लंका रामेश्वरम पे खड़ा हुआ और सीधा ही लंका में कूद गया। भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं बेचारे 8 फुट भी कूद नहीं सकते, कोई मेडल भारत को नहीं मिलता ओलंपिक में। हनुमान जी इतना लंबा कूदते थे तो इंडिया वाले कुछ तो कूदे ना, कुछ भी करे, कुछ तो करे ना, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आदमी इतना कूद जाए, उड़ जाए, हवा में उड़ जाए, और कभी तो मक्खी जैसा हो जाए, कभी इतना बड़ा हो जाए। बताते ना वो ऐसे छोड़ा, मैं हमने रामायण बहुत पढ़ी थी बचपन में, तो वो सुरसा के मुंह में गया तो मक्खी बन के बैठ, मक्खी जितना साइज का हो गया, और फिर एक बार इतना बड़ा हो गया कि बात नहीं पूछो, है ना? तो ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा कौन सा हार्मोन बॉडी में है जिससे वो तुरंत छोटा हो जाए, तुरंत बड़ा हो जाए? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये भी मुझे दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मेरा क्या है, ये गणेश का सिर जो काट के उसके पिताजी ने और हाथी का लगा दिया, अगर सिर गलती से कट भी गया था, गुस्से में आके सिर काट भी दिया, तो सिर तो उसका सिर तो वहीं पड़ा था, वही वापस लगा देते। पार्वती ने कहा भी, सिर इसका क्यों काटा आपने? सिर तो वहीं पड़ा था या उठा के कोई ले गया था? वहीं पड़ा था ना, तो छोटा सिर वही सिर उठा के वापस लगा देना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था भाई? अगर किसी को ए ग्रुप वाले को बी ग्रुप का खून चढ़ाए तो क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाती? नहीं हो जाती। अब आपने इतना समझदारी नहीं की कि उठा के सिर अभी तो काटा है, थोड़ा वापस से वही लगा दो, है ना? फिर ढूंढने गए जंगलों में कि भी कोई हाथी का सिर लेके आए, तो हाथी का सिर लेके आए, और हाथी का सिर फिर आदमी के सिर पे फिट किया। पहली बात तो जीन ही नहीं मिलेंगे, उसका मतलब जेनेटिक डिफरेंस हो गया, ब्लड का डिफरेंस हो गया, और हाथी की नाली तो इतनी मोटी होती है ना, वो जो आर्टरी होगी कॉर्नरी आर्टरी, ये कितनी मोटी होगी उसकी, और आदमी कितनी होती है इतनी सी, तो टांके कैसे लगाए होंगे? कैसे पॉसिबल है, मतलब हाथी का सिर आदमी के सिर पे फिट करना कितनी मुश्किल बात है। हम तो साइंटिफिक आदमी, साइंटिफिक तरीके से मुझे समझा दो आप तो हम मान जाएंगे, नहीं तो हम कहेंगे ये बेकार की बात है। तो उन्होंने मुझे बताया, पहले तो रावण का ही बताया, रावण का बताया कि रावण जो है, रावण बेसिकली कोई इंसान नहीं है, रावण कोई इंसान है, कोई इंसान का रूप नहीं है रावण। रावण बेसिकली क्या है, बुराई का प्रतीक है। लक्ष्मी नारायण जो है, विष्णु जो है, सत्युग का स्वरूप है। फिर मैंने विष्णु का क्वेश्चन नहीं पूछा था, उन्होंने पहले विष्णु का बताया कि विष्णु जो है सत्युग में विष्णु दिखाते हैं, है ना, स्वर्ग में विष्णु का दिखाते हैं। तो विष्णु बेसिकली कोई ऐसा आदमी नहीं कि चार बाजू वाला आदमी नहीं है, है ना? वो बेसिकली क्या है, नारायण और लक्ष्मी का कंबाइंड रूप है। दोनों के पैर एक हैं, पैर दो दिखाए, सिर एक दिखाया है, और चार बाजू मतलब जीवन चलाने के लिए किससे काम करते हैं, बाजू से काम करते हैं ना। तो वहां पर दोनों का एक सिर माना, दोनों का पति पत्नी का सिर एक जैसा रहता है, एक जैसा माना, एक जैसी थिंकिंग होती है, एक जैसी थिंकिंग होती है, और चलना तो एक ही रास्ते पर दोनों को। जब पति पत्नी बन गए तो कौन से रास्ते पे चलना होता है, दोनों अलग अलग जाएंगे, एक ही रास्ते पे जाएंगे, जब तक जीना तो इकट्ठे ही जाना है ना। तो ये उसका गृहस्थ का रूप है, पवित्र प्रवृत्ति मारक का रूप है विष्णु सत्युग में, और कलयुग में वही रूप क्या है, वही रावण का रूप है। अगर आप रावण को ध्यान से देखें, उन्होंने मुझे दिखाया, चित्र में दिखाया, रावण को ध्यान से देखें, मैंने फिर रामायण में भी देखा, उसमें पांच सिर आदमी के होते हैं, पांच सिर औरत के होते हैं, बीच में गधे का सिर होता है, बीच में दिखाते ना, उस सिर के ऊपर गधे का सिर दिखाया जाता है, तो पांच आदमी के पांच औरत के। तो हमने दिखाया कि ये जो पांच आदमी के औरत के क्या दिखाया, पांच विकार औरत के और पांच आदमी के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदमी के अंदर भी है और औरत के अंदर भी पांच विकार हैं, किंतु आदमी का काम किसी और के ऊपर जाता है, उसको किसी और बात पे क्रोध आता है, लोभ उसको किसी और बात पे, अहंकार किसी और बात का, मोह किसी और बात का, उसी घर में औरत का काम विकार किसी और पे जाता है, उसका क्रोध किसी और पे है, लोभ किसी और बात का उसको, मोह किसी और बात का, अहंकार किसी और बात का, विकार भी कॉमन नहीं है उनके, कलयुग में विकार भी कॉमन नहीं है, दोनों को एक बात पे क्रोध नहीं आता है, दोनों को एक बात से लोभ नहीं है, दोनों को एक बात पे मोह नहीं है, दोनों को एक बात पे अहंकार नहीं है, दोनों को काम विकार भी एक बात पे नहीं है, एक दूसरे पे आकर्षित नहीं है पति पत्नी। सच देखो तो आज के जमाने में, एक्चुअली आपको पता होगा एक कहानी, शायद पता होगी नहीं, पता नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं इसी बीच में, आपको पता होगा एक राजा थे, सम्राट थे भारत के, द्वापरी के शुरू की बात है, राजा भृतहरि, भर्तहरि कहते हैं उसको, पता है, याद है, पता है, भृतहरि, उसकी रानी थी पिंगला, उसकी रानी का नाम क्या था, पिंगला, बहुत सुंदर थी, तो राजा को अपनी रानी से बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, बहुत अधिक प्यार था, तो उसने क्या किया, राजा ने एक बार एक ऋषि कोई उसके दरबार में आया, उसने राजा बहुत अच्छा था, राजा भर्तहरि बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे सम्राट थे भारत के, और बहुत प्रजा का ध्यान रखते थे, रात रात को जाग करके सारे देखते थे कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई गलत काम तो मेरे राज्य में नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे मतलब धर्म के और प्रजा के पालक थे। तो वो एक फल लेकर के आया कि महाराज मुझे बहुत तपस्या करने से फल प्राप्त हुआ है, ये फल मैं आपको देता हूं, ये फल अमर फल है, ये फल खाएंगे तो आप बहुत लंबा समय जिंदा रहेंगे और युवा रहेंगे, सुंदर रहेंगे। तो राजा ने वो लेके चला गया कि महाराज इसको आप सुबह स्नान करके खा लेना तो आपको बहुत ऐसा आयु यौवन प्राप्त हो जाए, सदा के लिए यौवन प्राप्त हो जाएगा। अब राजा को मन में क्या आया कि राजा ने सोचा कि मैं क्या करूंगा इसको यौवन को प्राप्त करके, मेरी जो रानी है बहुत सुंदर है, वो सदा युवा रहे सुंदर रहे तो क्या होगा, मेरे को इसी में खुशी है। तो उसने अपनी रानी के लिए क्या किया, वो अपनी रानी के पास गया, रानी को बोला कि रानी ऐसे ऐसे ना मेरे को एक ऋषि ने फल दिया है, ये फल सदा युवा रखने वाला अमर फल है, तो इसको तुम खा लो तो तुम जो है बहुत सुंदर सदा सारी उम्र रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। किंतु रानी को क्या था, रानी को राजा से प्यार नहीं था, उसको सेनापति से प्यार था। तो उसने कहा मैं क्या करूंगी खाके, वो सेनापति मेरा जो जो है सेनापति है वो सदा सुंदर रहे युवा रहे तो मैं खुश रहूंगी। तो उसने सेनापति को बुलाया, सेनापति ने कहा कि सेनापति को बताया कैसे से कि आपके लिए मुझे किसी ने फल दिया है ये, और ये फल आप खाओ तो इससे आप सदा युवा रहेंगे सुंदर रहेंगे और मैं खुश रहूंगी। अब सेनापति को रानी से प्यार नहीं था, सेनापति को जो एक जो राजनर्तिकी थी ना जो उस राज्य की, उससे प्यार था। और राजनर्तिकी को उसने राजनर्तिकी के पास गया, तो राजनर्तिकी के पास गया कहता है तुम ऐसे करो देवी, तुम ये फल खा लो, ये अमर फल है, इससे आप सदा युवा रहोगी, अगर आप युवा रहोगी खुश सुंदर रहोगी तो मैं खुश रहूंगा। अब राजनर्तिकी को सेनापति से प्यार नहीं था, उसको राजा से प्यार था, वो राजा को बहुत अच्छा मानती थी कि राजा तो धर्म का पालक है, न्यायी है ना, तो मेरा राजा सदा सुंदर, मेरा राजा सदा युवा रहे तो हमारा देश का अच्छा अच्छा कल्याण होता रहेगा, देश खुश रहेगा, देशवासी खुश रहेंगे, तो मुझे क्या करना, मेरा जीवन तो वैसे ही खराब है, इससे अच्छा तो जब मर्जी मर जाऊं क्या फर्क पड़ता है, आज भी मर जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। तो राजा के पास गई, हे राजन ये फल मुझे किसी ने दिया है, अमर फल है, इसको खाने से युवा रहेंगे ना, सुंदर रहेंगे। राजा ने कहा ये तो वही फल है जो मैंने कल रानी को दिया था, ये यहां राजनीतिक के पास कैसे आया, उसने ले लिया, चुपचाप ले लिया और लेकर के फिर उसने इन्वेस्टिगेशन कराई, पता कराया कि क्या ये क्या कहानी है कि ये फल कहां कहां से ट्रेवल करके आया है मेरे पास, तो उसको सारी कहानी का पता लगा। तो तभी उसको क्या हो गया, वैराग्य हो गया कि जिसके लिए मैं जीवन सोचता था, ये जीवन, ये रानी मेरी है, ये मेरा, इसको मुझसे प्यार होगा शायद, इसको मेरे से प्यार ही नहीं है, तो उसको फिर वैराग्य हो गया। फिर उसने कहते ना, सुने ना, गुरु उसका गोरखनाथ का वो शिष्य बन गया, उसने राज्य त्याग दिया। तो ऐसा, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि राजा का जो आदमी का और औरत का आपस में प्यार नहीं है, विकार भी उनका दूसरों के प्रति होता है। अगर टीवी देख रहे हैं ना, तो पत्नी को कौन अच्छा लग रहा है, धर्मेंद्र अच्छा लग रहा है, पुराने जमाने की बात करो, इस जमाने में तो शायद नए कोई होंगे, मुझे पता नहीं कौन है ना। और पत्नी को कौन अच्छी लग रही है, हेमा मालिनी अच्छी लग रही है, पति को हेमा मालिनी अच्छी लग रही, उसको धर्मेंद्र अच्छा लग रहा है ना। मतलब मन में भले रहते एक दूसरे के साथ हैं, किंतु बड़ाई किसकी करते हैं, आपस में एक दूसरे की बड़ाई नहीं करते हैं, दूसरे आदमी की, और वो आदमी औरत की बड़ाई कर, दूसरी औरत की बड़ाई करता है, और औरत दूसरे आदमी की बड़ाई करती है। तो ये जो है इस समय ये स्थिति है, इसलिए विकार, ये जो पांचों विकार हैं सबके अंदर व्यापी हैं। इस समय भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये पांचों विकार सर्वव्यापी हर इंसान में है, हर इंसान में है। रावण वह सर्वव्यापी हो गया है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबके अंदर व्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान तो ऑल माइटी है, वो जहां है वहीं से सबको पालना दे रहा है। तो पहली बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि रावण, और रावण का राज सारी खाली लंका में नहीं, सारी दुनिया में है, ये सारी दुनिया लंका है। मेरे को ये नहीं, मैंने पूछा नहीं था कि दुनिया लंका है कि नहीं, लंका सारी दुनिया लंका है, चारों तरफ पानी है और सारी दुनिया पे रावण का राज्य है, सोने की लंका है, सब कुछ आपके पास है। आज इंसान के पास सब कुछ है, लाइट भी उसके वश में है, हवा भी उसके वश में है, गर्मी ठंडी भी उसके वश में है ना, सब कुछ है कि नहीं। एसी चलाओ तो ठंडी हो जाती है, हवा चाहिए तो हवा तभी आ जाती है, कूलर चलाओ कूलर आ जाएगा, लाइट चाहिए लाइट आ जाएगी, है ना। पांचों तत्व उसके वश में है, भोजन जैसा बनाना चाहिए वैसा बना सकता है, पांचों तत्व उसने वश में किए हुए, रावण ने सब वश में किया हुआ था ना, तो सब कुछ उसके वश में है। सब कुछ करने के बाद भी रावण आज इंसान दुखी है, लंका में हर व्यक्ति दुखी था सब कुछ होने के बाद भी, है ना। तो ये लंका सारी दुनिया है, और इस पर कौन आता है, राम आते हैं। राम माना, राम माना दशरथ का बेटा नहीं, शिव, शिव बाबा आते हैं और बंदरों की सहायता से क्या करते हैं, लंका पर। और हम जो आत्माएं, आत्माएं सीता है जो कहां बैठी है, अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में बैठी, शोक वाटिका माना दुख 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 में बैठी है, किसकी इंतजार कर रही है, राम के आने की, है ना। तो मैं रामायण को पहले भी सच्चा नहीं मानता था, मैं सोचता ये रूपक है, ऐसे थोड़ी ना बंदर होते हैं, बंदर ऐसे करेंगे, राम उसकी बंदरों की हेल्प लेगा, तो बंदर एक्चुअली बंदर हम हैं, बंदर माना हम मनुष्य बंदर के जैसे हो गए, शक्ल इंसान की है किंतु क्या बन गए, पहले मंदर के लायक थे, अभी क्या बन गए, बंदर बन गए, मंदर के लायक माना देवी देवता थे, अभी क्या बन गए, बंदर जैसे बन गए, है ना। तो बंदर जैसे बन गए माना कामी क्रोधी लोभ मोह अहंकार के वश हो गए, है ना। तो हम बंदर जैसे, और उसकी सहायता से भगवान क्या करते हैं, इस लंका पर चढ़ाई करते हैं और रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो मेरे को पहली बात समझ में आया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, पहला मुझे विश्वास हुआ। दूसरी बात, गणेश की बात सुनी, तो गणेश की बात, गणेश का मतलब क्या है, गणेश का से छोटा था, उसने क्या कहा कि शंकर को कहा कि तुम अंदर नहीं जाओ, मेरी मां स्नान कर रही है। तो पहले वो गणेश की, वो जो है उसकी मां पार्वती उसकी पत्नी है कि उसकी मां है पहले, है ना। मतलब उसको अहंकार आ गया ना, उसका छोटा सिर था, छोटी बुद्धि थी, तो शंकर ने क्या दिखाया, उसका सिर काट दिया। सिर काट के कौन सा सिर लगाया, हाथी का सिर, हाथी का सिर, का सिर माना छोटी बुद्धि को विशाल बुद्धि बना दिया, ऐसे सिर काटा नहीं उसने, विशाल बुद्धि बना दिया। उसकी जो परखने की शक्ति, सूंढवाना क्या होता है, सूंढवाना परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, तो सूंढ का मतलब परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति से मतलब है। और पेट को कहते हैं, पेट को बुद्धि भी कहते हैं ना, पेट बड़ा दिखाया है ना, और लड्डू उसका भोजन दिखाया, लड्डू माना क्या, ये जो ज्ञान रत्न है ना, जो ज्ञान रत्न मिलते हैं, जो हमें ज्ञान मिलता है ये लड्डू के रूप में है, मीठा मीठा, बाबा जो बातें सुनाते बहुत मीठी बातें सुनाते हैं, मुरली है ना, वो हम खाने को वो उसका शौक है। और चूहा उसका रथ दिखाया, चूहे की सवारी दिखाई ना, चूहा चूहे के ऊपर कोई आदमी बैठता है क्या? चूहे पे बैठ के दिखाओ जरा आप, कोई बैठ के दिखाया चूहे के ऊपर? चूहा माना समस्या, समस्या। चूहा क्या करता है? चंचल बहुत होता है ना, समस्याएं, समस्याओं के ऊपर बैठता है, समस्या उसका वाहन है, समस्याओं के ऊपर चलता है, समस्या उसके ऊपर नहीं है, समस्याओं का ऊपर रहता है, राइट। तो इसलिए उसे कहते गणपति बप्पा मौर्या है ना, कोई भी कार्य करना शुरू करना हो तो वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आया कि सचमुच में ये क्या गणेश का क्या रूप है। ऐसा कोई इंसान साइंटिफिकली तो हो ही नहीं सकता ना, हो सकता है ऐसा इंसान कोई? तो समझ में आई कि हाँ सचमुच में गणेश कौन है, गणेश हम ही बच्चे हैं बाबा के, हम हर इंसान गणेश है। जब तक हमारी बुद्धि छोटी है तब तक हम कौन है? छोटा वाला गणेश, आदमी के सिर वाला। मैंने कहा सिराफा काटना पड़ेगा, पहले दिन आप आए तो मैंने क्या कहा था आपका, सबका सिर काटना पड़ेगा नहीं, ये पुराना सिर नहीं, आपकी हार्ट की आर्टरी ब्लॉक की है, ये सिर निकालना पड़ेगा, सोचना देखना बोलना खाना सुनना सब बदलना पड़ेगा। तो सिर आपका काट में से तो आपका अब लगभग कट चुका है, ठीक है, पुराना वाला सिर कट, अभी किसी किसी का थोड़ा बाकी होगा, तो लगभग कट के नया लगने वाला है, लग भी गया है लगभग, काफी हद तक लग गया है, ठीक है। थोड़े दिन देखना आपकी बड़ी बड़ी सूंड हो जाएगी, ठीक, नाक हो जाएगी बड़ा, सिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है है ना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपकी परखनी शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक क्या है गलत क्या है वो आपको ठीक नॉर्मल पता लगेगा। अभी आप अभी तक हमको पता लगा ठीक क्या है गलत क्या है, हम गलत को ठीक समझते थे और ठीक को गलत समझते थे, अभी हमको समझ आई, क्या समझ आ रही है, ठीक क्या है और गलत क्या है। तो परखनी शक्ति हमको मिल गई, निर्णय करने की शक्ति मिल गई, है ना, सुन का मतलब यही ना। तो ये हमें समझ में आ गई, आंखें छोटी मुख बड़ा है ना, दिखाते ना इस तरह से। फिर हनुमान, हनुमान कौन? हनुमान का अर्थ है जिसने अपने मान का हन किया हो, हनुमान जिसने अपने अपने अभिमान को मारा हो, ईगो को मारा हो, वह है हनुमान। बैठता था जूतियों में जाके, मतलब कहते दिखाते ना, हनुमान कहां बैठता था? जूतियों में जाके बैठ जाता था, मतलब इतना सिंपल इतना सरल। सदा क्या करेगा? सोफे पे नहीं बैठेगा, कहां बैठता था? पैरों में बैठेगा। और सदा क्या? जय श्री राम, है ना, हां जी। कभी नाजी किया उसने? कभी नाजी करता दिखाया? नहीं, हां जी, सदा हां जी करने वाला। देखो ये बात, ये हां अलर्ट होके बैठो, सदा हां जी करने वाला। और क्या उसी क्या?